आज की बात।
श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी पर उठने वाले विवाद के बारे में। भारत में महाराष्ट्र पुलिस ने देश के कई भागों में छापे मार के 5 कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये गिरफ्तारियां इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव में हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में की। गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं में वामपंथी विचारक और कवि वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नौलखा और वर्नॉन गोंजाल्विस शामिल हैं। अरुण फरेरा ने हिरासत में लिए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सुधा भारद्वाज की बेटी ने बताया कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उससे वो डर गईं।
उन्होंने जितना हमारा ईमेल आईडी था, आईक्लाउड था, जो भी मेरा फोन था, 2 फोन मेरे पास थे, आईपैड था और मम्मा के 2 फोन्स थे और 2 लैपटॉप्स थे, वो भी उन्होंने ओपन किए। फिर सब पासवर्ड वगैरह मांगा उन्होंने। टॉर्चर एज सच तो नहीं हुआ, पर वही था कि हमारे उनके पास सर्च वारंट नहीं था उस चीज का। और लाइक हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, महिलाएं हैं घर पे, और इस तरीके से उनका आना और वो 10 लोगों का आना इस टाइप का, तो हमें वो चीज तो बिल्कुल भी एक हैरेसमेंट ही है।
शुक्रवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी सिंह ने कहा कि जांच से पता चलता है कि माओवादी संगठन एक बड़ी साजिश रच रहे थे। पीवी सिंह ने मीडिया के सामने कई पत्र पढ़े जिसके जरिए बताया गया कि ये सामाजिक कार्यकर्ता सीधे माओवादी सेंट्रल कमेटी के संपर्क में थे। इन पत्रों में सुधा भारद्वाज द्वारा कथित तौर पर सेंट्रल कमेटी को लिखा गया पत्र भी शामिल था। मगर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि सरकार और सरकार समर्थक मीडिया ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जाएं।
ये स्टोरी बना रही है कि ये लोग भीमा कोरे गांव में कोई नक्सल एंगल है और ये लोग सब अर्बन माओइस्ट हैं। ये एक पूरा स्क्रिप्ट जो कि सरकार और सरकार के स्पोक्समैन और उनके कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के कब्जे में हैं, जो ये पूरा स्क्रिप्ट बना रहे हैं कि भाई जो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो अर्बन माओइस्ट हैं, वो अर्बन नक्सल्स हैं, और इसी वजह से ये बनाया जा रहा है। तो ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया।
पुलिस के इन आरोपों के बाद अपने घर में निरजर बंद की गई वकील सुधा भारद्वाज ने अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अपनी बात रखी। सुधा भारद्वाज ने पुलिस के जरिए पेश किए गए पत्र को मनगढ़ंत बताया और कहा कि इस तरह के पत्रों को पेश कर उनकी आपराधिक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। सुधा भारद्वाज ने लिखा कि जिस तरह की बैठकों को आपराधिक तौर पर पेश किया जा रहा है वे किसी से छिपी नहीं है। बहुत सी लोकतांत्रिक गतिविधियों, बैठकों, सेमिनारों और विरोध प्रदर्शनों को ये कहकर रोक दिया गया है कि उनके पीछे माओवादियों का हाथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का कहना था कि ये कार्यकर्ता माओवादियों के साथ साथ कश्मीर में अलगाववादियों के संपर्क में भी थे। इसके जवाब में सुधा भारद्वाज ने लिखा कि मैं विशेष तौर पर बताना चाहती हूँ कि मैंने मोगा में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कभी भी 50,000 रुपये नहीं दिए थे। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र के किसी अंकित को नहीं जानती, न ही कॉमरेड अंकित को जानती हूँ जो कश्मीरी अलगाववादियों के संपर्क में है। आरएसएस समर्थक संदीप सिंह का कहना है कि कार्यवाही निष्पक्ष रूप से की जा रही है और पुलिस ठीक तरीके से अपना काम कर रही है।
ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है क्योंकि हमने जो 2 नाम लिए उनको अरेस्ट किया गया था और वो बेल से बाहर हैं, और पुलिस को ही उसी प्रोसेस में कुछ और लोगों के नाम मिले तो पुलिस उनको भी अरेस्ट करके उनकी भी जानकारी ले रही है। अगर हम इस पे सवाल उठाते हैं कि आज जो कुछ हुआ तो हमें लास्ट वीक जो सनातन संस्था के लोगों को अरेस्ट किया गया उस पर भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम किसी न किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसी न किसी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पुलिस, वही पुलिस है, वही महाराष्ट्र पुलिस है जो सनातन संस्था पे कार्रवाई कर रही है, वही पुलिस है महाराष्ट्र की जो इन लोगों पे भी कार्रवाई कर रही है माओइस्ट पे। और हम शायद ये भूल रहे हैं कि एक लिटरेचर लेटर मिला है जिसमें ये लिखा गया कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है। हम इस ये देश 2 प्रधानमंत्री खो चुका है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद रखा गया है। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें वापस उनके घर छोड़कर आना पड़ा। लेखकों, कवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। गौरतलब है कि भारतीय न्याय व्यवस्था की एक एक बात संजोकर रखी जाती है। अदालतों के आदेशों को इतिहास की अलमारी में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विद्वानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उसे नज़रबंदी में तब्दील करने का जो अंतरिम आदेश दिया वो भी इतिहास में सुरक्षित रखा जाएगा। ये आदेश जिनके खिलाफ है वे कहते हैं कि यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने एक दार्शनिक वाक्य भी बोला है जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई। ये वाक्य इस तरह था कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। जस्टिस चंद्रचूड़ के इस वाक्य की बड़ी चर्चा हुई। वरिष्ठ विचारक प्रोफेसर अपूर्वानंद इन गिरफ्तारियों पर ये टिप्पणी करते हैं।
कहा जा रहा है कि इन सब का रिश्ता षड्यंत्र से था, जिस षड्यंत्र के चलते हिंसा हुई, और उसमें बीच में एक नया कोण प्रस्तुत किया गया जिसमें एक पत्र प्रस्तुत किया गया, निकाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र की बात कही जा रही है। उस पत्र का विश्लेषण सबने करके सामने रख दिया है और इससे ज्यादा हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जो गोपनीय ढंग से काम करता है अपने कंप्यूटर पे ऐसा पत्र रखेगा। उस पत्र का विश्लेषण स्वतंत्र पत्रकारों ने किया। मसलन प्रेम शंकर झा कोई अर्बन माओवादी नहीं है, अगर ये सरकार उनको कहना चाहे तो ये अलग है, वे वामपंथी भी नहीं है, लेकिन प्रेम शंकर झा ने उसका वायर में जो विश्लेषण किया है उसे आप पढ़ लीजिए, वो इतना स्पष्ट और पारदर्शी है कि यह एक तरह का प्लांटेड पत्र है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि कोई भी नक्सलवादी या माओवादी उस तरह का पत्र कभी नहीं लिखेगा। जो भी उनको जानता है वो जानता है, लेकिन मूर्खता हमारे पुलिस की एक पहचान भी है। जनतंत्र को सीमित करने की कोशिश की जाती है, वहां एक हवा खड़ा किया जाता है और वो हवा है कम्युनिस्टों का हवा। भारत में माओवादी का हवा खड़ा किया जा रहा है, ये अमेरिका के मैकार्थी युद्ध के युग की याद दिलाता है जिसमें इस तरह का हवा खड़ा किया जा रहा है। अगर आप हिटलर को छोड़ दें तो अर्बन माओवादी और रूरल माओवादी क्या होता है, जंगल का माओवादी क्या होता है। अब आनंद तेलतुंबड़े जो कि एक एकेडमिक दलित चिंतक हैं, वो किस प्रकार अर्बन माओवादी हैं। आनंद तेलतुंबड़े जिन्होंने भीमा कोरेगांव में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम की आलोचना भी की है, ये ध्यान रखिए, ये वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल यह कार्यक्रम सिद्धांततः वे उसके विरुद्ध हैं। आनंद तेलतुंबड़े पर भी निशाना बांधा जा रहा है, साधा जा रहा है, वरवर राव पर भी साधा जा रहा है। वरवर राव बहुत घोषित रूप से सीपीआई माओवादी के समर्थक रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आप माओवाद में विचार कर सकते हैं, इस वजह से आप अपराधी नहीं हो जाते। लेकिन यह सरकार विश्वास दिलाना चाहती है कि कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करता है वह आतंकवादी है, वो अपराधी है, और यह एक डर वो सामान्य लोगों में पैदा कर रही है।
टीकाकारों का मानना है कि वैसे तो जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई तभी से विचारकों और विद्वानों के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि लेखकों, कवियों और विद्वानों के मौन विरोध प्रदर्शन का सत्ता पक्ष के चतुर विद्वानों की तरफ से मुखर विरोध कराया गया था। उसी समय एक चिंता ये भी जताई जाने लगी थी कि पत्रकारिता पर दबिश डालने या उसे फुसलाने का माहौल बनाया जाने लगा है। भारतीय मीडिया पर यह आरोप भी लगता है कि वो सरकार की गोद में बैठ गई है, और ये आरोप खुद मीडिया के भीतर से भी लोग लगा रहे हैं। कुछ टीकाकार कहते हैं कि असहमति या अहिंसक विरोध की ज़बरदस्त मुखालफत का काम नई बात नहीं है। नई बात यह है कि किसी भी तरह की असहमति पर पीछे से हमले को रोकने के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रूप से तत्पर कार्यवाही की। भले ही सुप्रीम कोर्ट की ये सजगता अभी अस्थायी आदेश के रूप में, लेकिन कम से कम इस आदेश से देश के जागरूक समाज में लोकतंत्र के गुणधर्म पर बेखौफ सोच विचार करने का मौका तो बन ही गया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने इस बारे में NDTV से बातचीत में अपना विचार रखा।
देखिए, अभी एक बहुत डिटेल एनालिसिस वोटर्स का आए हैं और पोल्स का आए हैं, ABP, लोक नीति और CSDS के, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार का जो पॉपुलैरिटी है और ख़ासकर मोदी जी का पॉपुलैरिटी जो है बहुत गिर रहा है। तो अभी इलेक्शन तक कोशिश ये रहेगी कि एक तो अपना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को यूनाइटेड रखें और जो ऑपोजिशन का सॉलिडारिटी है उसको तोड़ दिया जाए, जो बहुत बनती आ रही है सॉलिडारिटी। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल के, जैसे झूठ वीडियोस दे देखे, फेक न्यूज़ देखे, स्टूडेंट्स को, दलितों को, जेएनयू सबको एक तरह से एक एंटी नेशनल ब्रश से पेंट किया। अब वही काम हो रहा है ये अर्बन नक्सल करके कह के, क्योंकि वो पहले भी, मतलब ये सरकार नहीं, पहले का सरकार भी ऐसा किया था कि जो आदिवासी उठ के आ रहे, जो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे, सबको माओवादी बना दिया था। अब वो आदिवासी क्षेत्र से बाहर आके अब दलितों को भी माओइस्ट कह रहे हैं, ताकि वो आदिवासी का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, दलित एस्पिरेशंस को जो कुचल रहे हैं लेकिन उसको माओवादी के नाम देके उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है, पुराना भी है ऐसा कुछ, पूरा बहुत बड़ा चार्ज लेके अरेस्ट कर रहे हैं और बहुत गलत चार्ज दे के अरेस्ट कर रहे हैं। ये लोग तो एल्गार परिषद का मीटिंग में भी नहीं थे, वो रैली में भी नहीं थे, और अभी जैसे उन्होंने बनाया, जब गुजरात में पहला इशरत जहान, सोहराबुद्दीन, उन सबको ये एक्यूजेशन करके मार डाला था कि वो मोदी के खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, वो केस अभी जस्टिस लोया तक पहुंच गए। अब ये कह रहे कि दोबारा एक चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी का भी एनालिसिस है।
भारत में इन गिरफ्तारियों को लेकर अलग अलग विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, कुछ गलियारे से सही तो कुछ बिल्कुल गलत ठहरा रहे हैं।